सुमारे 400 वर्षांपूर्वी म्लान झालेल्या गलित गात्र झालेल्या महाराष्ट्राला ज्या समर्थवाणीनं चेतवलं त्याविषयी तितक्याच अधिकारवाणीनं विवेचन करणाऱ्या एका व्यासंगी पत्रकाराचे विचार ऐकूयात. विषय आहे समर्थांची राष्ट्रभक्ती आणि बोलणार आहेत पद्मश्री मुझफ्फर हुसेन. माननीय मुझफ्फर हुसेन हे व्यवसायाने पत्रकार आहेत. 1945 साली राजस्थानात बिजोली या गावी ते जन्मले. विक्रम विश्वविद्यालयातून त्यांनी पदवी प्राप्त केली. नंतर मुंबई विद्यापीठातून प्रथम वर्गात LLB चीही पदवी मिळवली. हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी या भाषा त्यांना अवगत आहेतच, आणि त्यापैकी गुजराती, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीतून त्यांची 11 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. आज मी तिला देश विदेशातल्या 42 दैनिक आणि साप्ताहिकातून ते स्तंभलेखन करतायत. औरंगाबादमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या देवगिरी या समाचाराचे ते सल्लागार संपादक आहेत. एवढंच नाही तर त्यांना एकूण 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. अशा अधिकारी व्यक्तीकडून आजच्या युगाला अतिशय उपयोगी अशा विषयावर ओघवत्या राष्ट्रभाषेतून ऐकूया समर्थांचे राष्ट्रभक्तीपर विचार.
समर्थ रामदास शब्द जब हमारे कानों में सुनाई पड़ता है तब निश्चित ही राष्ट्र और महाराष्ट्र का वे चित्र आकर के सामने खड़ा हो जाता है जो भले ही 400 साल पहले का हो, लेकिन जब अंतर्मुख होकर हम अपने आप में देखते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या समर्थ रामदास आज के भारत की परिस्थितियों का मार्गदर्शन करने के लिए फिर से जन्म लेंगे? रामदास कहने को तो राम के दास हैं, पर उनके शब्द में, उनके नाम में बिजली कोंध जाए इतनी बड़ी ताकत है. मन और मस्तिष्क को झिझोड़ देता है ये शब्द. आज से नहीं, बरसों से और युगों से जब जब भारत किसी भी परेशानी में, संकट में अथवा तो दुविधा में पड़ता है, तब घूम फिर करके वे अपने उन आचार्यों की तरफ दौड़ पड़ता है जहां से उसे मार्गदर्शन मिला है. भारत को एक धन्य धान्य नगर के रूप में सारी दुनिया जानती थी. लगभग सारी दुनिया के अंदर ये बात प्रचलित थी कि भारत सभी तरीके से साधन संपन्न देश है. जहां तक संपत्ति का प्रश्न है, भारत निश्चित रूप से एक ऐसा देश और महादेश है जिसमें जितने प्रकार की संपत्तियां दुनिया में हो सकती है वे सभी यहां पर उपलब्ध है. और जब संपत्ति का नाम आए, हीरे जवाहरात का नाम आए, सोने चांदी का नाम आए, तो दुनिया का की कौन सी शक्ति होगी, कौन राजा होगा, कौन महाराजा होगा जो उसकी तरफ न दौड़े. और भारत की संपत्ति, भारत की खूबसूरती, भारत का अध्यात्म और भौतिक रूप से उन दिनों में भारत की जो प्रगति थी उसे सुन करके, देख करके लोग बहुत छोटे शब्दों में कह दिया करते थे, वह सोने की चिड़िया है. उस सोने की चिड़िया की तरफ लालायित होने के लिए समय समय पर अनेक आक्रांता आए. हमारा पिछला 1000 साल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी हम मुसलमानों के आक्रमण के शिकार हुए, कभी यह देश अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार हुआ, पुर्तगालियों का शिकार हुआ, फ्रेंच का शिकार हुआ, और इस शिकार के अंदर जब भारत के ऊपर नजर दौड़ाई जाती है तो फिर सवाल खड़ा होता है, क्या भारत गुलामी में ही रहेगा? भारत गुलाम अवश्य हुआ, राजनीतिक रूप से अवश्य गुलाम हुआ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वे कभी भी गुलाम नहीं बन सका। और आज जब आज के संदर्भ में हम समर्थ रामदास को अपनी आदरांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हैं, तब एक ही बात उठती है कि उन्होंने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए क्या विचार किया। बहुत दूर निगाह डालें तो तब पता लगता है हिंदुस्तान के पश्चिम, उत्तर पश्चिम का वे भाग जो कल भी आक्रांताओं का मनपसंद क्षेत्र था और वहीं से वे भारत में घुसते थे, तब से लगा करके आज के तालिबान तक, आज के वे सारे, चाहे वे अलकायदा के व्यक्ति हों, चाहे वे मुल्ला उमर के मानने वाले हों, आज भी भारत पर उसी सीमांत प्रदेश को पार कर बोलन और खैबर के दर्रे से उस पार हिंदुस्तान में आधमकते हैं, भले ही उस भाग का नाम आज पाकिस्तान हो गया हो। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान शब्द में भला क्या आकर्षण हो सकता है? जिसके पास किसी प्रकार की संस्कृति नहीं, जिसके पास किसी प्रकार के विचार नहीं, चिंतन नहीं, और यहां तक की संपत्ति भी नहीं, लूट जाने के पश्चात, गुलाम हो जाने के पश्चात, दुनिया के अंदर हर समय दुखी हो जाने के बाद भी भारत धन धान्य का देश रहा, भारत आकर्षण का देश रहा। पर एक बात तय है, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया कभी भी गुलाम नहीं बना सकी। और देखने में यह आता है कि जब गुलामी की लहर सारे देश में चल रही थी, तब भी टापू के रूप में कुछ प्रदेश, कुछ साम्राज्य ऐसे थे जहां हिंदुत्व की पताका फहराती थी। यदि 8वीं-9वीं शताब्दी से मुसलमानों ने जोरदार तरीके के हमले किए और धीरे धीरे वे सारे हिंदुस्तान पर छाए, उससे पहले 14वीं शताब्दी के अंदर एक बड़ा भरपूर हिंदू साम्राज्य, दक्षिण का वे साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य कहलाता है, वे यहां पर पूरी तरीके से गुलाब के फूल की तरह से खिला हुआ था। जब उन्होंने पूरी तरह से, मुगलों ने हिंदुस्तान को बेड़ियों के अंदर जकड़ा, तब भी हमने देखा कि हिंदुस्तान में आजादी की लहर करने वाला हिंदवी साम्राज्य जन्म ले चुका था। और 18वीं शताब्दी में जबकि औद्योगिक क्रांति की बातें हो रही थी, अंग्रेज, फ्रांस, मुस्लिम, ये सब के सब आक्रांता भारत को दबोचने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने देखा कि उत्तर पश्चिम के अंदर महाराणा रणजीत सिंह का खालसा साम्राज्य स्थापित था। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि कोई ये कहे कि हिंदुस्तान पूर्णतया कभी गुलाम रहा तो यह बात इतिहास में मानने में नहीं आती। समय समय के ऊपर, चाहे वे छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हों, मगर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर, हिंदुत्व की पताका, हिंदुत्व का ध्वज लहराता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात यह कि जब 14वीं शताब्दी के अंदर विजयनगर का साम्राज्य स्थापित हुआ, भारत में जब भी कभी हिंदवी साम्राज्य, हिंदुत्ववादी साम्राज्य, हिंदुत्व की लहर को प्रसारित करने वाले, हिंदुत्व की सारी नीति और उनकी कार्यकुशलता के ऊपर चलने वाले साम्राज्य स्थापित हुए, तो उनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति थी। और यही आध्यात्मिक शक्ति जिसे विनोबा भावे ने अपने भाषणों के अंदर आचार्य कुल से संबोधित किया है। हमारे कुछ आचार्य थे जो समय समय के ऊपर हमको मार्गदर्शन दिया करते थे और ये बतलाते थे कि उस राज्य के राजा को क्या करना है। क्या मजेदार बात है कि 14वीं शताब्दी के अंदर हरिहर राय और बुक्का जैसे हिंदूवादी सम्राट जीवित थे और जिन्होंने आसपास के उन मुस्लिमों की मुस्लिमों को ऐसा पतित किया, ऐसा पराजित किया कि उनकी आंखें कभी भी वापस उस साम्राज्य की ओर, जो विजयनगर का साम्राज्य था, उसकी ओर नहीं उठी। लेकिन उस साम्राज्य के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो विद्यारण्य स्वामी। विद्यारण्य स्वामी दक्षिण भारत का वो नाम है, वो हस्ती है जिसने केरल से लगा करके महाराष्ट्र तक के अंदर अपनी सारी विचारधारा, जो आध्यात्मिक विचारधारा थी, उसको प्रचारित और प्रसारित किया। और इस आचार्य के कारण से ये विद्यारण्य महाराज यूं तो श्रृंगेरी के सबसे बड़े पीठ के ऊपर आसीन हो चुके थे, शंकराचार्य बन चुके थे, मगर उस समय के शंकराचार्य को ऐसा लगने लगा कि शंकराचार्य के पद से अधिक महत्व की बात बुक्का को और साथ के अंदर हरिहर राय को समर्थन देने की आवश्यकता है कि कहीं विजयनगर गुलाम ना हो जाए। तो एक सही आचार्य बनकर के उन्होंने शंकराचार्य का पद छोड़ दिया, शंकराचार्य का पद स्वीकार नहीं किया, निकल पड़े कर्नाटक के अंदर कृष्णा नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, कावेरी के किनारे के कहीं पर से भी, आंध्र से लगा करके कर्नाटक तक का वे भाग केवल और केवल गुलामी से बच सका। तो जितना श्रेय हरिहर राय को जाता है, जितना श्रेय बुक्का को जाता है, उससे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति को प्रचारित और प्रसारित करने वाले विद्यारण्य स्वामी को जाता है। यदि विद्यारण्य स्वामी नहीं होते तो मान करके चलिए कि वापस से विजयनगर कभी भी स्वतंत्रता के रूप में नहीं होता। थोड़े से और आगे बढ़ें, जब हिंदुस्तान के ऊपर सिकंदर जैसी बड़ी ताकत ने हमला किया था, तो सिकंदर को पराजित करने के लिए एक आचार्य पूर्वी भारत से चलकर के पश्चिम में आता है, और पश्चिम में आकर के वो आचार्य जिसे सारी दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है, आकर के पश्चिम के अंदर आसीन हो गए और कहा, उठ ए हिंदुस्तान, उठ ए हिंदुत्वादी, देश के सबसे बड़े विश्व के भूभाग, यदि तू प्रतंत्र हो गया तो दुनिया में आध्यात्मिक प्रकाश को प्रचारित और प्रसारित करने वाला कोई नहीं होगा। और इसलिए हमने देखा कि सिकंदर मुंह की खा करके चला गया। सिकंदर की पराजय के पीछे कौन, तो इतिहास जवाब देता है, आचार्य चाणक्य। और विजयनगर को जीत नहीं सके तो विजयनगर की शक्ति के पीछे कौन, तो मात्र विद्यारण्य स्वामी। उन्होंने जिस तरीके की बातें की, और थोड़े से आगे बढ़िए तो भगवान राम ने जो पूरा एक तरीके का राम राज्य स्थापित किया, विचार कीजिए, यदि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या यह चीज स्थापित हो सकती थी। तो हर समय हिंदुस्तान की कोई ना कोई बड़ी ताकत के पीछे कोई आचार्य रहा है, कोई महामहिम रहा है, कोई आध्यात्मिक शक्ति रही है। वे कभी विश्वामित्र थे, वे कभी हमारे ये चाणक्य थे, और वे कभी विद्यारण्य महास्वामी जी जैसे लोग थे जिन्होंने उसको बचाया। आगे बढ़ते हैं तो 16वीं शताब्दी के अंदर पूरा महाराष्ट्र, नीचे हैदराबाद से लगा करके ऊपर के गोलकुंडा तक के जितने भी सम्राट थे, जितने मुस्लिम साम्राज्यवादी थे, उन्होंने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को अपने शिकंजे के अंदर कस रखा था। छत्रपति का राज शुरू होता है, मगर शिवाजी को छत्रपति बनाया किसने, और वे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे सफल होते हैं। तो फिर जैसे भूतकाल के अंदर कभी चाणक्य का नाम आया, कभी विद्यारण्य महाराज का नाम आया, कभी विश्वामित्र का नाम आया, तो एक नाम हमारे सामने और प्रस्तुत होता है, इतिहास जिसका नाम बताता है, समर्थ रामदास। समर्थ रामदास ने वही भूमिका निभाई जो विश्वामित्र ने निभाई, जो रण्य महादेव ने, स्वामी जी ने निभाई, और जो आचार्य हमारे चाणक्य ने निभाई। यदि समर्थ रामदास को हम इसके अंदर से छत्रपति शिवाजी के हिंदवी साम्राज्य से अलग कर दें, तो हिंदवी साम्राज्य की आभा, उसकी चमक दमक, उसकी रूपरेखा बिल्कुल धुंधली सी नजर आती है। और थोड़े आगे बढ़िए, जब 18वीं शताब्दी आई और जिस समय पूरी तरीके से अंग्रेज हावी हो गए, उस समय गुरु नानक के अनुयायी 10वें गुरु ने जिस प्रकार की शहादत दी, उस शहादत का नतीजा यह आया कि हिंदुस्तान में खालसा साम्राज्य स्थापित हो गए। इसलिए मेरे मित्रों, बात ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई आचार्य हमेशा रहा है। आज यदि आप वापस से हिंदुस्तान को चाणक्य के युग में, समर्थ रामदास के युग में लाना चाहते हैं, तो वर्तमान के संतों से, साधुओं से, आध्यात्मिक शक्तियों से और हिंदुस्तान की हिंदुत्व की लहर को समझने और जानने वाले लोगों से ये अनुरोध है कि आपको वापस से कोई आचार्य कुल पैदा करना होगा। और यदि आपको आचार्य नहीं मिलता है, तो मान करके चलिए कि हिंदुस्तान की सरकार को किसी भी तरीके का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। मार्गदर्शन केवल कागज के पन्ने, जिसे हम संविधान कहते हैं, वे नहीं देता है। जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास इतिहास की इतिहास का पूरा खजाना हो, जिसने भारत के भूगोल को समझा हो, जिसने, क्योंकि ये जमीन देवों की जमीन है, आदमी की जमीन को, पशु पक्षियों की जमीन को समझ लेना बहुत आसान है, किंतु इंसानों की जमीन को समझना बड़ा मुश्किल है, देवताओं की जमीन को समझना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए इस देश में आज जब समर्थ रामदास की याद आती है, तो समर्थ रामदास इन दिनों तभी सफल होंगे और हम उनके नाम लेने के योग्य तभी होंगे, जब हिंदुस्तान में एक आवाज उठे कि गंगा से लगा करके कावेरी तक के बीच में जब कल तक सारे आचार्य पैदा होते थे, आने वाले दिनों में वे मार्गदर्शन देते थे, तो इसी प्रकार का मार्गदर्शन हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। आज नहीं मिल रहा है। आप ये मत मान करके चलिए कि आप यूएनओ में बैठ गए, आप किसी जगह जाकर के हेग की अदालत में बैठ गए, आप किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर के आ गए। ये अंतर्राष्ट्रीय उठापटक हो सकती है, मगर राष्ट्र की धड़कन को समझेगा कौन? राष्ट्र की धड़कन को वह समझेगा जिसने इस राष्ट्र को जन्म से लगा करके आज तक समझा है, जाना है। हिंदुस्तान को जानना और समझना बड़ा कठिन है। मैक्स मूलर अपना माथा धुनता हुआ यहां से चला जाता है। अंग्रेज का मेकाले चाहता था कि हिंदुस्तान को पूरी तरीके से भौतिकवादी शक्ति के अंदर बदल दूं, मगर वे नहीं बदल सका। क्या बात थी ऐसी रामदास के अंदर? रामदास एक सीधे साधे आदमी थे, मगर एक बात बड़ी अजीब है, जब पैदा हुए तो बाप ने नाम रखा नारायण। नारायण तो परिपूर्ण है, नारायण तो विष्णु है। अरे विष्णु ही समर्थ हो सकता है, स्वयं ईश्वर अपने नाम के रूप में समर्थ का नाम देता है, कहता है कि तू नारायण है, और जब नारायण है तो निश्चित रूप से तू समर्थ ही तो होगा। और समर्थ तो कैसा समर्थ? आदमी को सामर्थ्य पैदा करने के लिए शारीरिक शक्ति का गुण, शारीरिक शक्ति को एकत्रित करना पड़ता है। जब किताबों को उछेनते हैं, पन्नों को पलटाते हैं, तो मालूम पड़ता है एक आदमी समर्थ, जिसे पूरा खाना भी न मिलता होगा, ब्राह्मण का पुत्र इधर उधर से लाकर के रोटी मांग करके लाता होगा, अरे पर कैसी ताकत कि सवेरे उठते ही 2000 बार सूर्य नमस्कार करे। सूर्य को नमस्कार करना इतनी आसान बात थोड़ी है। सूर्य के तेज को अपने नेत्रों के माध्यम से अपने मस्तिष्क तक पहुंचाना और वैचारिक लहर पैदा करना, यह सूर्य नमस्कार का एक केंद्र बिंदु है और वही केंद्र बिंदु 2000 बार वह व्यक्ति सूर्य नमस्कार करते थे। और सवा मन का बोरा, उनके समय में मन चलता था, आप ज्यादा से ज्यादा अगर कहें तो आज उसको क्विंटल कह लीजिए, 1.25 क्विंटल जिसमें 100 से 125 किलो का वजन होगा, उसको अपनी कमर के ऊपर उठाए और फूल की तरीके से फेंक दे। इसलिए हिंदुस्तान हमेशा से ताकत का, शारीरिक ताकत होगी तो मानसिक ताकत आएगी, और मानसिक ताकत होगी तो आप में अध्यात्म पैदा होगा। इसलिए जब समर्थ रामदास को याद करते हैं तो महाराष्ट्र की कुश्ती को याद करना पड़ता है। महाराष्ट्र में यदि हम एक नजर दौड़ाएं तो हर जिले के अंदर एक मालेगांव है। यह मालेगांव क्या है? कोई मालताल की बात है क्या? पर जब उसका विवेचन करते हैं, जब उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो मालूम पड़ता है इस मालेगांव का अर्थ है मल्ला गांव। ये कुश्ती के केंद्र थे जहां पर लोगों को कुश्ती सिखाई जाती थी। खुद ताकतवर बनेंगे तो अनुयायियों को ताकत देंगे, जब स्वयं ही ताकतवर नहीं है तो दूसरों को क्या ताकत देंगे। एक ताकतवर आदमी, कैसी ताकत? अध्यात्म की ताकत दिल में, सरस्वती की ताकत मस्तिष्क में, और शारीरिक ताकत अपने शरीर के अंग अंग के अंदर समो करके एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो व्यक्ति कोस परिवार सोचता है चलो इसका विवाह करते हैं। और विवाह एक ऐसा प्रसंग होता है जब सारा घर खुश होता है, मगर जब अंतिम चरण में, विवाह का अंतिम चरण हो रहा था, लोगों ने देखा समर्थ तो भाग गए, नारायण वहां पर नहीं है, और जाकर के अपने आप को किस वृक्ष के नीचे बिठाया? वो वृक्ष था अश्वत्थ, अश्वत्थ नाम का वृक्ष, उसके नीचे वे जाकर के बैठ गए और साधना में लीन हो गए। हिंदुस्तान बड़ा अजीब देश है। भगवान बुद्ध को कहां ज्ञान मिला? महावीर किस वृक्ष के नीचे बैठे? ये वनस्पति की दुनिया है, वृक्षों की दुनिया है, इसीलिए तो हम कभी पीपल की बात करते हैं, इसीलिए तो हम कभी बरगद की बात करते हैं। वे जाकर के बैठे बोधि वृक्ष ने, जिस तरीके से भगवान बुद्ध को महात्मा बुद्ध बना दिया, इसी तरीके से अश्वत्थ को नारायण से समर्थ बना दिया, समर्थ से रामदास बना दिया, समर्थ रामदास हो गया। शक्ति कहां से आई? जब शक्ति को कहते हैं तो माने पैदा कब किया? रामनवमी के दिन। और इस देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुरुष कौन? तो राम। और राम का अनुयायी कौन? राम को शक्ति देने वाला कौन? और राम से शक्ति लेने वाला कौन? तो कि मारुति। इसलिए उन्होंने मारुति को अपना जीवन साथी बना लिया, दिल की धड़कन बना ली, और कहा अब मेरा केवल एक काम है, जगह जगह के ऊपर जाऊंगा और मारुति के मठ स्थापित करूंगा। वे निकल पड़ते हैं, मारुति के मठ स्थापित करते हैं। प्रारंभ में 11 मठ थे, लेकिन जब उनका निधन होता है, भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि 1100 से उन्होंने कम मठ तैयार नहीं किए। 1100 मठ के बाद जो मारुति, जो हनुमान, शक्ति के पुंज, शक्ति के पहाड़ उनके शरीर में आकर के बस जाते हैं, और यहीं से उन्होंने कहा कि अब मेरा कोई आद्य देवता है तो केवल और केवल वही हो सकता है। उस व्यक्ति की शक्ति लेते हैं, शक्ति लेने के बाद कहां पहुंचते हैं? नासिक की धरती पर पहुंच जाते हैं। नासिक का नाम आते ही जाने अनजाने में सावरकर याद आ जाते हैं। सावरकर भी तो उसी पीढ़ी के आदमी, उसी पीढ़ी के अनुयायी के रूप के अंदर है, वही आध्यात्मिक पीढ़ी जो चली आ रही है आचार्य चाणक्य से, उसी के तो वे भी नेता और प्रणेता थे। उस नासिक में पहुंचते हैं, उन्हें पता नहीं कि आने वाले दिनों में यहां पर कोई ऐसा भी व्यक्ति बिरला पैदा होगा जिसकी हाथ में हथकड़ियां होगी, पांव में पेड़ी होगी, बहुत दूर जा रहा होगा अंडमान के द्वीप के अंदर काले पानी की सजा काटने के लिए, और तब जब जा रहा होगा कितना शक्तिशाली होगा। और जब वहां पर चले गए तो दो नदियां, जिसकी गोदावरी और मंदाकिनी, इन दोनों के संगम के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के एक ही बात कहते हैं कि श्री राम जय श्री राम, राम राम श्री राम जय 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 श्री राम, राम राम, जो उनका एक पूरा वाक्य था वह वाक्य को वे बार बार दोहराते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, इतिहासकारों ने लिखा कि श्री राम के उस जप को उन्होंने 13.5 करोड़ बार किया। और 13.5 करोड़ बार कर लेने के बाद उनके मन के अंदर राम बस गया, उनके मन के अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई और वो शक्ति हनुमान की शक्ति थी और यहीं से उनका मतलब वो उठता है। लेकिन पैदा किस लिए किया था श्री राम को? श्री राम ने किस तरीके से अपने अनुयायी के रूप के अंदर समर्थ को क्यों पैदा किया था? इसलिए पैदा किया था, जाओ पहले पूरे देश को देखो, और देशाटन के लिए निकल पड़े। 12 साल तक लगातार ने देशाटन किया। इस देश को देखने के लिए राम उत्तर से दक्षिण में गए, कृष्ण पश्चिम पूर्व से पश्चिम में गए, और कर लेने के पश्चात उनको ऐसा लगा कि मैंने सारे हिंदुस्तान को देखा। हिंदुस्तान के उस भाग को देखते हुए जो बात कही समर्थ रामदास ने, वो समर्थ रामदास कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से शाहजहां को काशी में 78 मंदिर तोड़ते हुए देखा, शाहजहां के काल के औरंगजेब का बाप। और जब वो वापस लौटते हैं, और जब लौटते हैं विशेषतया मनाचा श्लोक में और उनकी आसमानी सुल्तानी पुस्तक में जो उन्होंने एक मुख्य रूप से वर्णन किया है गुजरात का, गुजरात की गोरी महिलाओं को किस तरीके से आने वाले आक्रमणकारी उठा करके ले जाते थे, उनके साथ किस प्रकार का व्यभिचार, किस प्रकार का बलात्कार, किस प्रकार का अपमान होता था, उसका जो दुखद वर्णन किया है, वे दुखद वर्णन आज भी हमारे मन को महसूस करके रख देता है। गुजरात, उसके साथ में राजस्थान, मगर गुजरात का विशेष रूप से गौर वर्ण की सुंदरियों के बारे में समर्थ रामदास ने जो कुछ लिखा है वह एक चौंका देने वाली बात है। और यहां तक कि यह इतिहास का ऐसा तथ्य है जिसके लिए बड़े बड़े इतिहासकार इधर से उधर ढूंढते हैं, घूमते हैं कि क्या हिंदुस्तानी महिलाएं बाहर बेची जाती थीं? ये लोग आते थे, महिलाओं को उठा करके ले जाते थे और ईरान के बाजार में, तेहरान में, तेहरान के मार्केट के अंदर, काबुल से ऊपर वाले मार्केट में, उज़्बेकिस्तान से ऊपर वाले मार्केट में हिंदुस्तान की औरत नीलाम होती थी। इसका दुखद विवरण उन्होंने अपने उसके अंदर किया। ऐसा साहित्यकार, उनके दो अलग अलग तीन आयाम हैं समर्थ रामदास के जीवन के। पहला आयाम उनका देशाटन है, दूसरा आयाम उनका छत्रपति से मिलन और छत्रपति को महाराज के उसके अंदर बना करके ठेठ सज्जनगढ़ तक की यात्रा किस तरीके से पूरी हुई, सारा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन तीसरी चीज जो बहुत ही जानकारी पूर्ण है और जिसके लिए हिंदुस्तान हमेशा उनका ऋणी रहेगा, वे था उनका साहित्य। जब वे काशी गए, वाल्मीकि की रामायण को अपने हाथ से उन्होंने संस्कृत में लिखा है। और आज भी ढाबूलिया वाला नाम के सज्जन जो हैं उनके पास वह आज भी ज्यों की त्यों रखी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 50 ऋषि मुनि हुए, हमारे ज्ञानेश्वर हुए, हमारे तुकाराम हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, अनेकानेक संत हुए, मगर किसी संत ने यह काम नहीं किया कि अपनी कलम से उस पूरी की पूरी रामायण को कलमबद्ध करे। कलमबद्ध करने का काम किसी ने किया है तो मात्र और मात्र समर्थ रामदास ने किया है। और समर्थ रामदास ने यह कर लेने के बाद, इसलिए समर्थ रामदास के साहित्य के बारे में हिंदी के महान लेखक प्रभाकर माचवे लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कि जिसने इतना बड़ा काम किया हिंदी में, उसके ऊपर बहुत कम लिखा गया। मगर शोलापुर के एक हिंदी प्रकांड विद्वान सज्जन ने उनके सारे साहित्य, विशेषतया उनके दासबोध का हिंदी के अंदर अनुवाद करके एक चमत्कार किया। उनकी सारी पुस्तकों के सभी भाषा में अनुवाद हुए। एक बात निश्चित है कि ज्ञानेश्वरी सारे जगत के अंदर जानी जाती है, मगर ज्ञानेश्वरी के भी उतने अनुवाद नहीं हुए जितने अनुवाद दासबोध के हुए। ये साहित्य की दृष्टि से एक अनूठी, अछूती और अनोखी बात है। और जब ये सारे अनुवाद हम पढ़ते हैं तो बड़ी अजीब तरीके की बात लगती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं के अंदर, बंगाली के अंदर, जो समर्थ रामदास का विवरण दिया है, और वो कहते हैं बहुत दूर, वो कहते हैं, अरे ओ समर्थ, मेरा नमन स्वीकार करो, मेरा सलाम स्वीकार करो। 8 करोड़ बंगाली तुमको नमन कर रहे हैं, तुमको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि तुमने भारत की लाज रखी, तुमने भारत को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा स्थान दिलवाया कि जिस जो उसके साहित्य के अंदर सबसे तुम्हारा अद्वितीय और अप्रतिम कृत्य होगा। मेरे मित्रों, ये सारी बात हो जाने के पश्चात जो सबसे बड़ी भारी बात थी वह यह थी कि शिवाजी केवल शिवाजी थे, मगर शिवाजी से जब भेंट हो जाती है तो वे छत्रपति बनते हैं। उनके राज्याभिषेक की बात वे कहते हैं। समर्थ रामदास एक अकेला आदमी है कि जिसने संभाजी तक को पत्र लिखा, उनके सौतेले भाई को जिंजी से छुड़वाया, और जहां जहां जानकारी मिली कि इस तरीके के कृत्य होते हैं तो वे सारी की सारी चीजें करने के लिए, निश्चित रूप से हमको ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी बातें थोड़ी सी काल्पनिक लगती हों। मगर बात तो तब आती है जब वो देखते हैं छत की टेरेस के ऊपर से कि कोई एक व्यक्ति भिक्षा का कलश लेकर के मेरे महल की तरफ बढ़ रहा है। बाद में मालूम पड़ा ये कोई और नहीं, ये रामदास है। रामदास से उन्होंने कहा, आपको क्या चाहिए? मेरा सारा राजपाट एक चिट्ठी पर लिख दिया और अपने साथी से कहा, जाओ वो कलश के अंदर डाल दो कि जो कुछ शिवा का है वही तो तुम्हारा है। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तक से नीचे तक देखा और एक बात कही, हाँ है तो सही, लेकिन ये भी बात मान करके चलो ये तुम्हारा नहीं है जो तुमने मुझे दे दिया, ये तो संपूर्ण जनता का है। ये जनता कौन है? महाराष्ट्र की जनता है। मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र शब्द, 2 या 3 बड़े जो लेखक हुए हैं, बड़े जो मतलब ज्ञानी ऋषि और मुनि हुए हैं, उन्हीं के अंदर ये देखने को मिलता है। एक शब्द महाराष्ट्र शब्द का उपयोग करने वाला पहला आदमी समर्थ रामदास था, और रामदास ने उसको मतलब स्वीकार किया और महाराष्ट्र की शैली में कहा। यहां से वे किस तरीके से गोदावरी पार करते हुए कृष्णा पे जाते हैं और कृष्णा के किनारे किस तरीके से समर्थ रामदास और दोनों के बीच के अंदर जिस तरीके की आपसी बातचीत और वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप के बाद छत्रपति के मन के अंदर एक बात आई, मेरे इस प्रे गुरु को क्या दूं। उन्होंने एक घोड़ा दिया और कहा कि यह घोड़ा जो है, जिस तरीके से मेरा घोड़ा महाराष्ट्र की रक्षा करता है, इसके अंदर वह शक्ति होगी जो आपको भी शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी शक्ति ही कुल मिलाकर के जनता की शक्ति होगी। और इस तरीके से वे जनता की तरफ वहां पर जाते हैं। हमारे यहां पर सामान्य भाषा के अंदर हम जब मिलते हैं तो किसी को प्रणाम कर लेते हैं, किसी को नमस्कार कर लेते हैं। जोहार करना उस समय की शब्दावली थी, आपसी तरीके की जो भेंट होती थी उसमें जोहार किया जाता था। किंतु आपस में जब मिलेंगे तो राम राम कहेंगे। और आज भी जो राम राम कहा जाता है वे राम राम की पद्धत को प्रारंभ करने वाले केवल और केवल हमारे समर्थ रामदास थे। क्यों किया? आप जाइए तो दक्षिण में आपको रामचंद्रन मिलेगा, आप महाराष्ट्र में आइए आपको राम भाव मिलेगा, कहीं रामलाल मिलेगा, कहीं राम सिंह मिलेगा। केरल से लगा करके कश्मीर तक को अगर कोई एक सूत्र में बांधता है तो राम का शब्द बांधता है। इसलिए उस ज्ञानी पुरुष ने राम राम का शब्द की ईजाद करके हिंदुस्तान का नया कायाकल्प किया और चिंतन का एक ऐसा स्रोत दिया जिस पर हम आज तक विचार करते रहते हैं। मेरे मित्रों, यही राम की प्रेरणा से रामदास जी कृष्णा के तट पर पहुंचते हैं, जहां उनका मुख्य काम शिवाजी को सहायता देना थी। वहां राम की धर्मशाला कायम की और रामनवमी का उत्सव प्रारंभ किया। हिंदुस्तान के अंदर आज जो रामनवमी का उत्सव होता है वे ना रामनवमी के उत्सव के प्रणेता कोई थे, और राम के नाम की जो धर्मशालाएं बनाई जाती हैं वो दोनों ही काम इस व्यक्ति ने किए। और ये जितने भी, जैसे तिलक ने हमारे यहां पर गणपति उत्सव प्रारंभ किया, और गणपति उत्सव का नतीजा क्या निकला कि 1929-30 के बाद जब गणपति निकले तो गणपति के साथ हिंदुस्तान को आजाद करवाने की एक भावना जन्मी, और आखिर कुल मिलाकर के उस भावना ने ब्रिटिश सरकार का सत्यानाश किया, महात्मा गांधी को बहुत बड़ा बल दिया और एक ताकत के साथ वे चीज आगे बढ़ती रही। और इस तरह से जिस प्रकार से उन्होंने गणपति के नाम को लेकर के हिंदुस्तान के आजादी के झंडे को बुलंद किया, इस तरीके से रामनवमी का फंक्शन प्रारंभ करके जनता को एकत्रित करके और उन्होंने ये किया। समर्थ रामदास उन पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे जो त्रिसूत्रीय थे। त्रिसूत्रीय में बात यह थी कि पहले पढ़ो, बाद में लिखो और उसके बाद में मनन करो। हमारे यहां पर ऐसा होता है कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं, कोई भी बात सुन ली और सुनकर के जो भी कुछ किया, तो उस तरीके से ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आदमी भ्रम में पड़ जाता है। और उन दिनों में भारत में विशेषतया जो महिलाओं की स्थिति थी वे अत्यंत भयंकर थी। मां ने आशीर्वाद दिया, पिता बहुत जल्दी मर गए, मां जीवित रही। मां ने समर्थ रामदास को संपूर्ण आध्यात्मिक पुरुष में देखा और हिंदवी साम्राज्य के प्रणेता के रूप में देखा, लेकिन मां के उस रूप को भूले नहीं और कहने लगे, मां तुझमें भगवान की सबसे बड़ी कृति नारी बसती है। इसलिए अपने समय में उनकी 300 महिलाएं अनुयायी के रूप में थी। किसी और सूफी संत या किसी उसके अंदर हम महिलाओं को देखते हैं कि ना महिलाएं उनके पास आती है ना वे महिलाओं के पास जाते हैं, मगर वो जानते थे इस समाज की आधी शक्ति अगर किसी में निहित है तो वे मात्र महिलाओं में निहित है। इसलिए पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नारी शक्ति को माथे पर चढ़ा करके उसके सामने नमन किया और हिंदुस्तान की इस बड़ी ताकत को तोड़ा। बाद में फुले भी हुए, सावित्री फुले हुए, बाद में कई महिलाएं हुई कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर चलवल चलाई, मगर उस समय मुसलमानों की तरफ से ठूंसा हुआ पर्दा, उनकी बदमाशियों के कारण से निकले हुए घूंघट, घर में रहने की स्थिति, महिलाएं अधिक से अधिक अपनी चार दीवारी में रहना पसंद करती थी, उसके बावजूद उन्होंने निकाल करके और 300 महिलाओं को अपना अनुयायी बनाया। ये उनके जीवन की एक सबसे बड़ी बात होती है। दासबोध हिंदुस्तान में नहीं विश्व में एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है खलील जिब्रान की, और खलील जिब्रान की वो पुस्तक कहलाती है दी प्रॉफेट। वो दी प्रॉफेट में एक एक दीप के ऊपर एक आत्मा उतरती है, पैगंबर उतरते हैं, और पैगंबर से वो आत्माएं पूछती है तू कुछ हमें सच के बारे में बता, ये बता ईमानदारी क्या होती है, ये बता क्रोध क्या होता है, ये बता प्रेम क्या होता है, ऐसी चीजें जो परिभाषित नहीं की जा सकती। दास बोध में इस महामहिम व्यक्ति ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि शिक्षक कैसा हो, नारी कैसी हो, घर गृहस्थी कैसी हो, युवा कैसा हो, और साथ में राज करने वाला राजा कैसा हो, राजा के पास कौन कौन से तत्व होने चाहिए, वो सारी बातें करके उन्होंने जिस तरीके से उन सारी चीजों को एक प्रचारित और प्रसारित किया वे हिंदुस्तान के इतिहास की एक अनोखी और अछूती वस्तु है। शिवाजी के इसका नाम हिंदवी साम्राज्य ही क्यों रखा जाए, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न था, क्योंकि एक बात निश्चित थी विजयनगर के उसमें पूरे देश की आत्मा स्वतंत्र हो रही है यह आवाज नहीं आती है, खालसा में मात्र ऐसा लगता है पंजाब की आवाज है, मगर हिंदवी, आखिर हिंदू को आजादी चाहिए, और हिंदू को आजादी चाहिए मतलब उस प्रदेश को आजादी चाहिए, इसलिए कृष्णा नदी के किनारे उन्होंने जो कुछ गाथाएं लिखी उसमें हिंदुस्तान की आजादी का, हिंदवी साम्राज्य का पूर्णतया उन्होंने वर्णन किया। और इस वर्णन के बाद जो इसके अंदर शिवाजी ने तोरण दुर्ग जीतकर स्वतंत्र मन से राजनीति का ध्वज फहराया, समर्थ और रामदास की जहां पर समर्थ रामदास की जहां पर भेंट हुई, ये वो स्थान था तोरण का जिला, जहां पर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी उत्तर भारत के अंदर जब लड़की के पास लड़का दूल्हा बनकर के जाता है तो तोरण मारता है, उन्होंने उस दुर्ग का नाम भी तोरण दुर्ग दिया, इसीलिए दिया कि छत्रपति शिवाजी रूपी ताकतवर व्यक्ति हिंदुस्तान की वह आजादी जिसका किसी ने अपहरण कर लिया है उस अपहरण की हुई आजादी को वापस से लौटाने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरे मित्रों हिंदुस्तान में अनेकानेक ऋषि हुए, मुनि हुए, सब कुछ हुए, मगर ऐसा बहुआयामी जीवन किसी जगह हमें देखने को नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो केवल इसलिए नहीं मिलता है कि उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है, उनमें बुद्धिमानी नहीं होती है, उनमें शारीरिक बल नहीं होता है, उनमें संकल्प नहीं होता है, इन सारी बातों के धनी केवल और केवल छत्रपति के गुरु रामदास थे। और इसलिए छत्रपति सफल हुए कि रामदास जैसा उनको गुरु मिला और रामदासी पंथ चला, जैसे कि हम पंडरपुर जाते हैं तो वारकरी समाज है, वैसे यहां पर रामदासी समाज है, और रामदासी समाज के बाद भी वो राम के प्रति इतने थे कि एक ब्राह्मण के रूप में एक व्यक्ति आया और उसने पूछा क्या तुम कृष्ण में मानते हो, कहा नहीं, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, मेरा इष्ट देवता केवल और केवल एक है जिसका नाम राम है। अच्छा तो ऐसी बात है, जो गूगल हमारे इसका कंप्यूटर की का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो गूगल के अंदर इस स्टोरी को प्रसारित किया जाता है कि वे ब्राह्मण पता नहीं किस रूप में आया था, उनका अपहरण कर लेता है और ले जा करके पंडरपुर के अंदर खड़ा कर देता है, और जब वो पंडरपुर में जाते हैं तो कहा कि अब तो तुम कृष्ण के पास हो ना, और जैसे ही कृष्ण के पास होता है तो जहां विठोबा की मूर्ति विराजमान है वे क्या देखते हैं, वहां तो राम खड़ा है। तब वो कहते हैं राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, हिंदुस्तान के अंदर इन दो ताकतों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे मित्रों सोलहवीं शताब्दी का एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि अपने आप के अंदर था तो बिल्कुल एक आध्यात्मिक पुरुष, किंतु जिसने राजनीति की सूझबूझ, जिसने साहित्य की सूझबूझ, जिसने देश के भूगोल और इतिहास की सूझबूझ और जिसने अध्यात्म से लगा करके वर्तमान परिस्थितियों तक का विश्लेषण करने वाला केवल वह एक ही व्यक्ति था। और वो व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहा करता था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।